आप ये ना सोचिएगा कि यहूद की बुराइयां की जा रही हैं और उनकी गिरफ्तें की जा रही हैं, बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक बड़ी मोहब्बत वाली माँ अपने बच्चे को समझाती है, बेटा देखो वो फलां तुम्हारा दोस्त, देखो उसने ये किया था वो किया था, तो नुकसान हुआ ना, तुम वो काम ना करना। तो आयत नंबर 40 जो है, अल्लाह ताला कहते हैं तुम मुझे याद रखो, मैं तुमको याद रखूंगा, कैसे, उस कुरु नेमती अल्लती, तुम याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने इनाम किया, नाम तो अलैकुम, तुम पर। कौन सी नेमत थी ये? नबूवत की नेमत, इल्म की नेमत थी। पिछले सबक में आपने खिलाफत की बात देखी, इस लेसन में उसका रब मिल गया ना, वहाँ इल्म की बात थी, इल्म वही, फाइम मयाती यन्न को मिन्नी खुदन, जो वहाँ जुमला था ना वही यहाँ नेमत के लफ्ज़ में, आप कह लीजिए कि वहाँ जो लफ्ज़ खुदन था ना वो यहाँ नेमत ही है। ना समझ आए तो ऊपर से गुजार दे, जिनको समझ आती है वो लिख लें। इल्म की नेमत, हिदायत की नेमत, बहुत बड़ी नेमत है। और बनी इसराइल में तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि नबूवत भी इनकी थी, बादशाहत भी इनकी थी, हज़रत दाऊद और सुलेमान के दौर में। खैर, तुम पे मैंने नेमत की, इस नेमत का हक क्या है? व औफू बी अहदी, मेरे साथ किए हुए अपने अहद को पूरा करो। होगा क्या? ऊफी बी अहदी कुम, मैं तुमसे किए हुए अहद को पूरा करूँगा। वैया या फरहबून, और पस मुझ ही से डरो। ये है, तुम मुझे याद रखो, मैं तुमको याद रखूंगा। बनी इसराइल को यहाँ किस वादे की दावत दी गई? तो लिख लीजिए, अल्लाह ताला ने यहूद से तीन वादे लिए थे। पहला वादा क्या था? कि तौरात के अहकाम को आम करोगे, जैसे हमें आज कहा गया कि कुरान के मैसेज को आम करो, लोगों को बताओ, सिखाओ, पढ़ाओ। दूसरा अहद क्या था? कि इसके अहकाम को छुपाओगे नहीं, यानी डोंट हाइड द फैक्ट्स। तीसरा हुक्म इनको क्या था? कि बाद वाला जो नबी आएगा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने उसके आने पर उसका साथ भी देना है और उसके साथ तुमने ले लग के आगे काम भी करना है। यहूद ने ये तीनों ही मैसेज भुला दिए। किताब को आम करने की बजाय, पब्लिक को देने की बजाय, छुपा के रख दिया चंद दीनदारों के हाथ में। आपको हैरत होगी, यहूद की हिस्ट्री में कैसा दौर गुजरा कि तौरात के नुस्खे, जैसे आज आप सबके हाथों में कुरान है ना, आम लोगों में से किसी के हाथ में तौरात होना जुर्म था, ताकि इस तौरात पे चंद लोगों की मोनोपली रहे। और आज भी इसी तरह की बिगड़ी हुई सोच मुसलमानों के एक गिरोह में है, सब नहीं माशाल्लाह, अब तो कुरान के आम होने के दिन आ गए हैं, लेकिन एक ऐसा दौर गुजरा है मुसलमानों पे भी कि किताब के सिर्फ मजहबी लोग हाथ लगाए, ये तो उलमा के पढ़ने की बात है, आम लोग और फिर वो भी औरतें, तौबा तौबा। बहुत सारे लोगों ने औरतों के हाथ में किताबें कुरान देकर गिले किए, शिकवे किए, अब चुप हो गए हैं कि कोई बात नहीं, अब इन्होंने नहीं सुनना। तो ये चीज़ उनके उलमा ने जब अपने अंदर रखी तो नुकसान क्या हुआ? कि किताब जब आम ना हुई तो दीन पे चंद लोगों का कब्जा हो गया, किताब भूल गई। तुम मेरे साथ किए हुए वादे पूरे करो, मैं तुम्हारे साथ वादे पूरे करूंगा। अल्लाह का वादा क्या था बनी इसराइल के साथ? अल्लाह ताला के वादे क्या थे बनी इसराइल के साथ? कि तुम अगर इस किताब के पैगाम को आम करोगे तो तुम्हें दुनिया में भी बादशाहत दूंगा, दुनिया में भी तुम्हें गलबा दूंगा और आखिरत में भी दूंगा। ये तो है एक आम तौर पे इनके साथ जो अल्लाह ताला के वादे थे उनका तذکرہ। बाकी छोटे छोटे एहसानात हम अगले रुकुओं में पढ़ते रहेंगे। अल्लाह की नेमतें इन पे बहुत सारी थी, पत्थरों से पानी निकाला, मनोसलवा नाजिल किया, फिरौन की गुलामी से आज़ादी दी, इसी तरह इनकी तरफ नबी भेजे, रसूल भेजे। सूरत मायदा की आयत 20 में भी इसका तذکرہ आएगा, आप जाके उसका तर्जमा नोट कर लीजिएगा कि अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर क्या नहीं किया, इतनी नेमतें दी, इतनी नेमतें दी, लेकिन इन्होंने उस नेमत का इनकार किया। वैया या फरहबून, मुझसे और मुझसे ही डरो। इस बात की यहाँ क्या ज़रूरत थी? तो यहाँ नोट कर लीजिए कि बनी इसराइल को जो हुक्म दिया गया था ना कि तुमने मेरे पैगाम को आम करना है, मेरे वादों को पूरा करना है, तौरात के अहकाम को छुपाना नहीं है, आने वाले नबी का साथ देना है, लेकिन इन्होंने लोगों के डर से इन बातों पे अमल ना किया। ये रहब जो है ना, ये वो डर होता है जो किसी को अमल से रोक ले। कहते बहुत है कि हमें अल्लाह से डर लगता है, लेकिन अमल नहीं करते थे। अल्लाह ताला अपने नबियों के ज़रिए से जो दीन देता है वो अमल वाला दीन होता है। बैठ के अपने ऊपर कोई ऐसे ऐसी कैफियत तारी करते हैं, अला दीन नहीं होता कि फलां बड़ा अल्लाह से डरता है। कैसे डरता है? कुरान पढ़ता है तो वो बस उसको धमाल डालने लग जाता है, धुन पड़ जाती है। आज भी ये चीज़ आपने देखी होगी कि बाज़ लोग कुरान सुनकर इस तरह झूमते हैं झूमते हैं, फिर अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू। हज़रत उमर के दौर में एक शख्स ने के बारे में ये आपको खबर मिली कि कुरान पढ़ता है ना तो वजद में आ जाता है, इसको होश ही नहीं रहती बेचारे को। हज़रत उमर ने कहा कि इस पे शैतान आता है। कहा अच्छा, इसको ऐसे करो, शहर की ऊंची इमारत पे ले जाओ, उसकी छत पे बिठाओ, समझिएगा, यानी छत पे बिठाओ जो बिल्कुल खुली या नीचे होती है, और फिर कुरान पढ़ो। अगर वहां बैठ के भी इसके ऊपर यही हालत होना तो फिर ये सच है, वहां तो खतरा होगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। इसलिए अल्लाह सुबहान तआला इधर ये बात करके कहते हैं कि इनको कहो कि तुम मेरे से डरो और वादे पूरे करो। और इनके साथ वादे करने में ये भी वादा था, सूरत मायदा आयत 12 में आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, वलकद अखज़ल्लाहु मीसाक बनी इसराइल वबअसना मिनहुम उस्नै अशर नकीबा, कि इनसे वादे भी किए और इनके अंदर 12 नकीब भी भेज दिए। और साथ ही उसको कहा क्या था कि अगर तुम नमाज़ें कायम करो, तुम ज़कात दो, मेरे रसूलों पे ईमान लाओ, उनको इज्जत दो, तकवियत दो, और अल्लाह को कर्ज़ हसन देते रहो, तो ला उकफ़िरन्नाकुम सय्यातिकुम, मैं तुम्हारी बुराइयां दूर करूंगा, वला उदखिलन्नाकुम, तुम्हें दाखिल करूंगा जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। आप यहाँ अपने नोट्स में 3-4 लाइनें खाली छोड़ दें, सूरत मायदा की आयत नंबर 12 इस आयत की बेहतरीन तफसीर है। हदीस में भी आता है कि कुरान की तफसीर की बेहतरीन तफसीर क्या है, कि कुरान की दूसरी आयत उसमें कोट कर दी जाए। तो आपने अपने नोट्स में इस आयत का तर्जमा लिखेंगे तो जो बात मैंने अपने लफ्ज़ों में बताई है आपको समझ में आ जाएगी कि इनके साथ मामला क्या था। लेकिन जब कौमों के ऊपर जवाल तारी होता है ना, तो ये लोग अपनी मर्जी के काम करते हैं और अल्लाह के अहकामात को भूल जाते हैं। नुकसान क्या होता है कि वो काम करने की बजाय जिसके करने का हुक्म है कुछ और ही करने लग जाते हैं। वो क्या किया इन लोगों ने? अल्लाह के नबी का इनकार। इसलिए अगली आयत में फरमाया, वामिनु बिमान जल तो मुसद्दिक लिमा माकुम, और ईमान ले आओ उस पर जो तुम्हारे पास है, तस्दीक करता है तुम्हारी चीज़ों की। क्या चीज़ है आप लोग सोच के बताइए? यहाँ किस ईमान की दावत दी गई? आमिनु बिमा अनज़ल्तु, कुरान पाक। यहाँ नोट कीजिए, ये है वो जुमला जो यहूद को मुसलमान होने की दावत दे रहा है। आज कुछ हमारे अपने ही प्यारे कहते हैं, क्या हर्ज है अगर वो यहूदी रहते हुए भी अच्छे काम कर रहे हैं, और क्या फ़र्क पड़ता है अगर ईसाई जो है वो ईसाई रहते हुए भी अच्छे काम करें, वो अपने दीन पे तो अमल कर रहे हैं ना। ये जुमला आपने सुना है लोगों से? तो आज एक जुमला इस आयत के साथ लिख लें कि अगर ये अहले किताब अपने दीन पे अमल करें तो उनको मुसलमान होना पड़ता है, क्योंकि वह आमिनु बिमा अनज़ल तो मुसद्दिक लिमा माकुम, ये हुक्म दिया अल्लाह ने कि तुम ईमान ले आओ। इनकी किताबों में ये बात सरासर लिखी हुई थी कि तुमने आने वाले नबी के ऊपर ईमान लाना है। और हर दौर का नबी अपने लोगों को ये बात रिमाइंड करा के जाता था कि देखो, आखिरी नबी अगर तुम्हारे पास आ गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो तुमने इस चीज़ को छोड़कर उसके ऊपर आ जाना है, यानी वो कौन सी है जो वो दीन देगा, और इनको मानना था। लेकिन जब लोग अपनी चीज़ों पे पक्के हो जाते हैं तो वैसी बातों को नहीं मानते। वला तकून अव्वल काफिरिन भी, और देखो इसके पहले इनकारी ना बनो। कैसे लोग कहते हैं पहले इनकारी कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बनेंगे, इससे पहले तो मक्का के लोगों ने आपका इनकार किया। तो इसकी दो वजूहात लिखिए कि अव्वल काफिरिन बिही से मुराद क्या है, कि रिलीजियस लोगों में पहले इनकारी ना बनो। मुसलमान थे ना अपने दौर के यहूद, तो अगर वो अल्लाह के नबी का इनकार करते तो कुफारे मक्का ने क्या कहना था कि चलो भाई हम तो काफिर थे, हमें तो नहीं समझ आई इसकी, तो ये दूसरे इसी जैसे मुसलमान इसको क्यों नहीं मानते। ये वही मिसाल जो इंडिया और पाकिस्तान की आपको दी कि अगर मैं जाऊं और इंडिया के मुसलमान मेरे ही खिलाफ बात करें तो हिंदुओं को तो ये कहने का मौका मिल जाएगा ना कि देखे इनकी तो मुखालफत इनके मुसलमान कर रहे हैं तो हम क्यों माने, ये मतलब है। और दूसरा मानी यहाँ अव्वल काफिर बिही का क्या है, जिसको उर्दू में आप कहते हैं ना कि फलां अव्वल दर्जे का झूठा है, समझ आई, अव्वल दर्जे का झूठा, यानी बहुत ज्यादा बड़े इनकारी ना बन जाओ। अल्लाह ताला इनको डांटते हैं कि इस नबी की बात मानो, इसके साथ इनकार ना करो। वला तश्तरू बी आयाति समनन कलीला, और मेरी आयतों की थोड़ी कीमत ना खरीदो। ये क्या है? हक को बातिल में मिलाना, सही मसलों को छुपाकर दुनिया का कोई फायदा ले लेना। यहूद के उलमा में जो खराबी आ गई थी वो क्या थी कि ये तौरात के अहकाम को बदल देते थे कुछ पैसे लेकर, कुछ ओहदे लेकर, इज्जत लेकर। चूंकि किताब थोड़े से लोगों के हाथ में थी ना, तो तब्दीली करनी आसान थी। जब इनके पास कोई शख्स आता, मिसाल देती हूँ शेखों की, शेख कौम का कोई शख्स यहूद के उलमा के पास आता और कहता कि मेरे से कत्ल हो गए। अब कत्ल की सजा जैसे आज इस्लाम में कत्ल है ना, यहूदियत में भी थी। तो अब वो शख्स जिसने कत्ल किया है, या उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि ये कत्ल हो, तो फिर वो उनके किसी मौलवी साहब के पास आते, यानी प्रीस्ट के पास, उसको पास आके अंदर आके कहते, देखो हमारा ये जवान बच्चा मारा जाएगा अगर इस पे अमल हो गया हुक्म पे, कोई मसला हल निकालो कि ये बच जाए। पहले तो वो शुरू शुरू में कहते होंगे नहीं 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 कोई नहीं, कत्ल का बदला कत्ल है, तो वो फिर नीचे अंडर दी टेबल कुछ हाथ में रख देते, कुछ पैसे, फतवे, कोई ओहदा, आपको हुकूमत दे देते, आपको वजारत दे देते, बस अब थोड़ी सी तब्दीली कर दे। अच्छा, अब इसकी दो सूरतें होती जो अगली आयत में आ रही हैं, इसको यहाँ समझ लें। वो जो इनके आलिम थे वो क्या करते, खुद कहते तो मानना नहीं था लोगों ने, अंदर जाते तौरात का नुस्खा खोलते और उसमें जो आयत लिखी थी ना कि नफ्स बिन नफ्स, कत्ल के बदले, उसमें आगे लिख देते कि कत्ल का बदला तो कत्ल है, हाँ शेख बिरादरी का कोई शख्स अगर दूसरे को कत्ल कर दे तो उसकी सजा बस यह है कि उसको 100 कोड़े लगाए जाए। मिसाल है कत्ल से कोई छोटी लिख के, वो असल ओरिजिनल टेक्स्ट को चेंज कराते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे हम किसी को PDF कॉपी की बजाय किसी को वर्ड की कॉपी भेज दें, आप में से ही किसी को, और वो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेंज करके कहते, देखिए आप तो खुद कहते हैं कि आप महीने में 4 छुट्टियां कर सकते हैं, तो ओरिजिनल कॉपी बदल दी ना। यहाँ आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ कि तौरात और कुरान, या इंजील और तौरात और कुरान में फ़र्क क्या है। बहुत सारे लोग इस पे मिसअंडरस्टूड हैं। मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है, वो ठीक नहीं थी, वो अधूरी थी, पूरी नहीं थी, सो ऑन। गलत बात है। तौरात और इंजील अपने दौर के तकाजों के लिए उसी तरह कंप्लीट मैसेज था जैसे आज कुरान है। फ़र्क एक है सिर्फ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ुन। कुरान के लिए अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली कि इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, तौरात और इंजील के लिए ये जिम्मेदारी नहीं ली थी, बस ये फ़र्क था। नतीजा क्या निकला कि असल तौरात जो थी वो एक्सरसाइज बुक बन गई, जो दिल चाह लिखो, जो लिख चाह मिटा दो। अब आप कहते हैं ना कि भाई कैसे इतना मुमकिन है, तो आज पे कयास ना करें। आज आप अपने घर के कुरान में एक आयत बदल लेंगे, लेकिन दुनिया में करोड़ों नुस्खे हैं। तौरात और इंजील में इजाज़त ही नहीं थी, असल नुस्खे 4-6 ही होते थे। ठीक है, पीछे भी आपको सुनाया कि एक मौके पे इस पे बड़ा लोगों को हसद हुआ था कि कुरान जो है इसमें कोई तब्दीली नहीं होती और बाइबल में इतनी चेंजेस है। पूरी दुनिया से उन्होंने कोशिश करके 2 लाख नुस्खे जमा किए कुरान के, क्या और देखें इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। तो कहते हैं कि एक दो किताबत की गलतियां, क्योंकि हैंड रिटन होते थे ना पहले, कलम से लिखते थे डिप कर करके, एक दो किताबत की गलतियां, मसलन कहीं जेर नहीं लगी, कहीं जबर नहीं लगी, इसके अलावा वो सारे नुस्खों में कहीं कोई एक जबर जेर की भी फर्क नहीं था। इस पे लोग मुसलमान हो गए थे। बहुत वाकियात हैं कुरान की हिफाजत पे, इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी तो आप सुनते रहेंगे साथ ही साथ। इस बात पे एक शख्स मुसलमान हो गया था कि तौरात वाले तौरात की बातें पेश कर रहे थे, इंजील वाले इंजील की पेश कर रहे थे। वो कैलीग्राफिक करता था, बहुत ही खूबसूरत उसका यानी हैंड था हरा, तो उससे सोचा पैसे कमाते हैं। उसने तौरात की कुछ बातें लिखी और जाके ज्यूस को दिखा दी कि भाई ये मेरे पास, उनका अच्छा वो इतनी खूबसूरत है, मुंह मांगी कीमत दी, उन्होंने वो उससे खरीद ली कैलीग्राफी और अपने सिनेगॉग में लगा दी। इसी तरह उसने इंजील की कुछ बातें लिखनी चाहीं तो जाके लिख के दे दी। उसको ख्याल है कि तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, कुरान की आयतें कुछ लिखता हूँ। अच्छा, उसने क्या किया कि कुरान की आयतें लिखते हुए अल्लाह ने उसके दिल में डाला क्या किया कि लो कुछ ज़रा बदल के देखता हूँ, इनको क्या फ़र्क पड़ना है, खूबसूरती के लिए इसको इधर उधर कर दूँ। उसने बड़ी खूबसूरत एक पेंटिंग लिख बनाई और किसी मुसलमान इदारे के पास पहुँच गया, कहने लगा कि भाई ये मैंने आपके कुरान की आयत लिखी, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ले लें और कुछ इसका हदिया दे दें। तो जो वहाँ मुसलमान आलिम थे ना, उन्होंने कहा कि है तो बड़ी खूबसूरत, लेकिन मैं आपसे अभी ले नहीं सकता, क्यों, पहले मैं चेक करूँगा क्या आपने इसको वैसे ही लिखा जैसे है। अब थोड़ी सी उसके दिल में खटक आई कि पहले ने ये बात नहीं की। जब दोबारा उसने जाके चेक किया तो उसने कहा सॉरी, हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर गलती है। इस बात पे उस शख्स के दिल में फर्क पैदा हुआ कि पहले दो मजाहब वालों में ना ऐसा कोई इहतमाम था, ना उन्होंने पूछा तो कुरान के बारे में ऐसी क्या बात है, और रिसर्च की और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और आप जरा खुद को चुटकी काटे, आप दुनिया की इतनी बड़ी ऑथेंटिक किताब इस वक्त पढ़ रहे हैं, और मैं तो सजदे में ही चली जाऊं तो इससे भी कम है, ये भी कम है कि मैं ये किताब आप तक पहुंचा रही हूं। जब इधर बैठे ना, ये फीलिंग्स लेके बैठा करें, ऑथेंटिक, अनचेंजेबल। कोई आपको कह दे कि जो आज आप नॉलेज ले रही हैं ये अब आपकी सारी जिंदगी के लिए वैलिड है, तो क्या ये वर्थ इट है इसको जिंदगी देना, इसको वक्त देना? छुआ करें, अपने हाथों को प्यार से देखा करें, अपनी नज़रों पे आपको प्यार आने लगेगा जब दिन रात से कुरान को देखेंगी। तो लिहाजा अल्लाह ने कहा कि ये किताब नहीं बदलेगी, उधर क्या हुआ, वो किताब बदली। फतवे अब दो तरीके होते थे, वो शेख फैमिली पे वापस आ जाए, या तो ये लिख देते थे उसमें कि ये चोरी करने वाले की सजा जो है ये शेख फैमिली से इसको मुस्तस्ना कर दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इन्होंने क्या किया, हक के अंदर कुछ मिला लिया, ठीक है ना, असल हक रखा लेकिन मिला लिया। एक दूसरी सूरत थी, वो क्या थी, पूरी आयत ही जाके मिटा दो। ये दोनों सूरतें आगे आ रही हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि ला तश्तरु बी आयाति समनन कलीला, मेरी आयतों का थोड़ा मोल ना लो, वा इया या फत्तकूनी, और मुझसे ही डरो। यानी अल्लाह का खौफ जरूरी है इस बात को बताने के लिए। यकीन करें, यहां जब मैं बैठती हूँ ना, मेरा दिल कांप रहा होता है, क्योंकि इधर बैठ के तो नफ्स इतना ज्यादा आप पे गालिब, अपनी मर्जी से बातें पेश कर दे। मेरा अमल जो नहीं है तो मैं आपको भी कह दूं नहीं, नहीं जायज है। आज मुसलमान लफ्ज तो नहीं बदल पाते, तर्जमे तफसीरें बदल देते हैं अपने अकायद। आप इसी किताब से लोगों की देखे, उन्होंने 11वीं भी इससे साबित की हुई है, 12वीं भी की हुई है, शिर्क भी साबित किया हुआ है, कब्रों पर सजदे भी साबित किए हुए हैं, बुजुर्गों के आगे झुकना, उनको सलामियां देना, सब साबित किया हुआ है। तो यहाँ तो वही बैठे कि जिसके दिल में अल्लाह का तकवा है। इसलिए इल्म लेते वक्त ये ना देखा करें कि फलां के पास इल्म कितना है, ये देखा करें कि उसके पास अल्लाह का खौफ कितना है। शैतान से बड़ा भी कोई आलिम था, मैं नाम नहीं लेना चाहती, इस वक्त उम्मत मुस्लिम का एक ग्रोह कसीर ऐसे नाम के साथ है कि मैं मान सकती हूँ कि उससे बड़ा आलिम कोई नहीं होगा। इल्म बहुत है उस शख्स के पास, लेकिन हद से दूसरी तरफ गुजर गए, तो कई बातों को जायज़ को नाजायज़ और नाजायज़ को जायज़ कर दिया। तो काफ मुझसे डरो, और आप भी यहाँ बैठते हैं ना, फिर याद रखे, हुदा लिल मुत्तकीन, तकवा लेके नहीं साथ आएंगे ना तो आपको यहाँ से हिदायत नहीं मिलेगी। जब सुबह सामान पैक करते हैं ना, अपना बैग पैक तैयार करते हैं, बुक साथ तकवा का भी पाउच रखा करें। जिस दिन यहाँ आके आपके बैठ के सुनने की नीयत बदल गई, वल्लाही आपका दिल उठ जाएगा। आज अगर आपको चैन नहीं आता ना यहाँ आए बगैर, तो फिर चैन नहीं आएगा यहाँ आके, यहाँ बैठ के भी जान छुड़ा रहे होंगे, कब जान छुटे। तकवा ज़रूरी है। अल्लाह ताला कहते हैं वला तलबिसुल हक का बिल बातिल, हक को बातिल के साथ ना खलत मलत किया करो। ये वो मिसाल जो आपको दे चुकी हूँ कि आयत के आगे कुछ ऐड अप कर देते थे, व तक तुमुल हक का, और तुम हक को भी छुपाते हो। ये दूसरी तरीका था उनका छुपाने का, उस आयत को छुपा देते थे। आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक वाक्य आएगा तफसीर में कि अल्लाह के नबी के दौर में एक यहूदी औरत या मर्द या दोनों ने जिना किया, जब जिना किया तो अल्लाह के नबी के पास मुकदमा आया, तो आपने उसकी सजा में रजम का हुक्म दिया। यहूद को थोड़ा सा एतराज़ हुआ उस पर, आपने कहा नहीं, तुम्हारी किताब में भी इसका यही हुक्म है। कहा अच्छा, लाओ तौरात लेके आओ। एक यहूदी आलिम था इनका, फनहास गालिबन नाम था या कुछ और, जब वो तौरात लेके आया ना, तो उसने यूं खोली जैसे ये मैं खोल के ना, तो मैं अपना यहाँ हाथ रख दूँ, तो कहा पढ़ने लगा किधर है किधर है, तो अल्लाह के नबी ने कहा हाथ उठाओ। तो जब हाथ उंगली उठाई तो उसके हाथ के नीचे वो आयत थी। अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान हो चुके थे, तो उन्होंने बताया अल्लाह के नबी आयत मौजूद है लेकिन ये छुपा रहा है। तो जब हाथ उठाया तो नीचे वो आयत थी, ये है तख्तुमुल हक, और दीनदारों के जरासीमों में ये दो जर्म्स बहुत बड़े हैं। तलबीस हक, तलबीस कहते हैं लबीस यालबिस, एक बहुत मशहूर किताब है तलबीस इबलीस इमाम जौजी की, हक के अंदर बातिल करना। शैतान के हथकंडों में ये हथकंडा है, पहले बंदे को हक के पास आने नहीं देता, किताब पढ़ने नहीं देता। जब कोई पढ़ने पढ़ाने आ जाता है ना, तो फिर कहता है ये भी ऐड कर दो, कह दो कह दो, जायज़ है, कुछ नहीं होता। अब आप 1400 साल हो गए, आप लंदन में रहते हो, ये भी कह दो कह दो, आपको क्या पता कि यहाँ आके वो मुझे कितनी पीछे से चमचियाँ देता होगा कि ये भी कह दो वो भी कह दो। अगर आप औज़ बिल्ला ना पढ़ें, अगर आप अपने आप को बचाने की दुआएं ना करें, तो वल्ला ही यहाँ से इतनी गलत जुबान से बातें निकलवा दे, सारे शहर में फैल जाएंगी। जी उन्होंने क्लास में कहा ये बात, और बाद दफा आधी बात लेके लोग उड़ते हैं तो इस तरह के फंदे डल जाते हैं, अगले ने ये नहीं कहा होता। तो वन तुम तालमून में देखिए डांट है कि हो तुम इल्म वाले, पढ़े लिखे होते हुए इस तरह के करतूत करते हो कि अल्लाह का दीन छुपाते हो। आप सोच शायद इसकी शिद्दत को महसूस नहीं कर रहे, मैं आपको समझाती हूँ। आप में से कोई एक घर में रहते हैं जो इधर रहते हैं? कौन कौन? अनीसा क्या लगती है आपकी?
बेटी
बेटी है ना, माँ बेटी का मामला इतना बिगड़ा हुआ नहीं, लेकिन चले ठीक है, इन्हीं की मिसाल ले लेते हैं। आप देखिए कि अनीसा को इनकी अम्मी कुछ कहें, अब आपने जो बात इसको कही रात को जब आपके हस्बैंड जो इसके अब्बू हैं वो आए, तो ये आपकी बात कैसे सुनाए जो आपने कि उसमें चार लफ्ज़ और डाले, अम्मी ने मुझे कुछ कहा, या जो बात आप कहें उसको छुपा लें, तो आपको कैसा लगेगा? कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं हमारे ख़ानदानों में, मैंने ऐसे तो नहीं कहा था। यकीन करें जो यहाँ नहीं आते ना, अगर फारिग घर बैठे ना, आधा वक्त फ़ोन पे वो सिर्फ सफाइयाँ पेश कर रहे होते हैं, और आप भी ना आएंगे ना तो आप भी अपनी आधी ज़िंदगी सिर्फ लोगों को सफाइयाँ पेश करेंगे।
एक मिसाल मैं आपको बताती हूँ कि
जी
मैंने आपको देखा था कि आपने सिर्फ दो फर्ज पढ़ लिए, हालांकि चार फर्ज पढ़ने थे। तो मैं बड़ा हैरान हुई, मैंने जाके हस्बैंड से बात की कि वो अभी उन्होंने जाना है नॉर्वे, तो उन्होंने अभी क्यों दो फर्ज पढ़ लिए, क्यों बोल अभी से स्टार्ट क्यों कर ली फर्ज की नमाज। तो वो भी सोचने पड़ गए कि ये अभी सफर शुरू नहीं किया तो अभी से क्यों सफर की नमाज पढ़ने लगी है। तो उनके भी जहन में आ गया कि ये शायद कोई और फिरके से तो नहीं है। तो वो बीच में आलिया थी, तो आलिया ने क्लियर किया कि नहीं, उनका सफर शुरू हो चुका है, वो वाणी मानचेस्टर से आई है, तो मानचेस्टर में इधर स्टे किया है, इधर से फिर आगे उन्होंने जाना।
तो
तो
यहां
इस
से
तरह
आप
की बात
देखें कि
क्लियर
लोग
हुई।
आपको कितना क्रिटिकली देखते हैं। आप देखें कि आप सब बैठे थे नीचे माशाल्लाह इतने लोग, तो आप भी बड़ा कुछ कर रहे हैं छुपा छुपू के, कुछ तो मुझे पता लग रहा है, कुछ नहीं पता चलता। अब मैंने ये अभी नैपकिन भी पकड़े, आप सबने देख लिया, जितना आप नुमाया होते जाएंगे ना उतना लोग आपको देखते जाएंगे। अभी तो शुक्र करें छुपे हुए, जितना आपने बड़ी कुर्सियों पर बैठना है, अल्लाह की पनाह, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है बंदा, वल्लाही लोग आपके खाने पे, पीने पे, पहनने पे, ओढ़ने पे, बोलने पे बातें करते हैं। हकीकत है, ये सच बात है कि जब आप जितना ज्यादा आगे आते हैं उतने फितने हैं। तो जब हमारी कही हुई बात को कोई बदल दे, आपको यहाँ कोई मैसेज दे और आप बात करते हुए, ये एडमिन जो होते हैं इनको कई दफ़ा इस बात पे डांट पड़ती है कि आपने बात वैसे नहीं कही जैसे कहनी थी। तो जब हम इंसान नहीं ये बर्दाश्त करते, अल्लाह कैसे बर्दाश्त करे? अल्लाह को कुरान ना पढ़ने वालों पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना पढ़ा के पढ़ के इसमें अपनी मर्जियों के इजाफे करने वाले। और वल्लाही मैं दुख के साथ कहूँगी, अपने ऊपर लेते हुए कहूँगी कि आज जितने लोग कुरान पढ़ाने वाले हैं ना, उसमें से अक्सरियत को भी खुद पढ़ने की ज़रूरत है, वल्लाही वल्लाही खुद पढ़ने की ज़रूरत है अभी। हालांकि मैं अपने ऊपर लेके आपको बताती हूँ, आज भी मैं पाकिस्तान जाऊँ, कराची जब जाऊँ, लाहौर तो नहीं, जब मैं कराची जाती हूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश मेरे स्केड्यूल में होता है कि एक दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, जब पहला कुरान मैंने आज से कई साल पहले पढ़ाया वो उसमें मेरी स्टूडेंट थी, अल्लाह ने उनको इज्जत दी, तरक्की दी, उन्होंने और सीखा और पढ़ा, पूरे मदरसे में से सीखा, अब वो क्लास लेती हैं। तो मेरे स्केड्यूल में होता है कि मैंने कम से कम एक दिन ज़रूर जाना है, और कभी मैं जाऊँ ना तो वो दो कमरे हैं, एक कमरे में पढ़ाती है तो मैं पहले से एक तो बताती नहीं, हालांकि वो पहले से फ़ोन करके दर्स का टाइम वाइम भी ले लेते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ कि मैंने सिर्फ पीछे बैठ के सुनना है कि ये कैसे पढ़ाती हैं, और मैं सामने जाऊंगी तो वो फिर वो आपको पता ही है जो होता है स्टूडेंट्स का हाल, तो मैं पीछे छुपती के बैठ के सुनती हूँ, फिर एंड पे मुलाकात होती है, अच्छा आप आई हुई थी तो आप इधर बैठे हो, तो मैं मुझे नहीं, मुझे इधर बैठना है। इतना मुझे अच्छा लगता है अपने स्टूडेंट्स और अपने साथियों से सीखना। उलमा से तो आप जो सीखना होता है वो तो सीखते ही रहते हैं, आम लोगों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। ये इतना बड़ा एक नफ्स का बुत होता है जो शैतान हमारा बना देता है। आपको पता है कि इमाम मालिक के पास एक शख्स दूर से आया, इतनी दूर से आया, बड़ी शोहरत सुनी उनकी कि इमाम मालिक का बड़ा नाम सुना है, आ गया सफ़र करके बैठा, एक सवाल पूछा लादरी नहीं जानता, दूसरा पूछा आई डोंट नो, तीसरा मुझे नहीं पता, 40 सवाल उसने पूछे। इमाम मालिक हर सवाल के जवाब में कह रहे हैं आई डोंट नो। अब इनके किसी साथी ने ज़रा कहा कि बड़ी दूर से आया है, बड़ी दूर से आया, अब ये क्या सोचेगा आपके बारे में? आप सोचिए ना कि ये ऐसे मामला हो जाते हैं ना, तो गुस्से से बोले डांट के लोग कहते हैं जब मैं कह रहा हूँ कि लादरी तो तुम मुझे क्यों मजबूर करते हो कि मैं अपने पास से कुछ कहूँ, मुझे नहीं पता। तो अब आप कहें कि इमाम मालिक का तो नाम डूब गया, वो तो छोटे हो गए, वो तो कमज़ोर हो गए, वल्लाही हमने इल्म की रूई नहीं पाई, ये तकवा की कमी ना होने की वजह से इल्म के आज जो हमारे शोशे हैं ना फैलते हैं। इन्हीं आयतों के ऊपर बात होती है, क्या कुरान की तालीम पर कोई मुआवजा ले सकता है? तो हालांकि आप देखिए टैक्स में वो बात तो है ही नहीं है, या कुरान पढ़ाने के पैसों की तो बात नहीं, ये तो हेरा फेरियों की सारी कहानियां चल रही हैं, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ इस एक आयत को ले ला, या तो अब देखिए इसकी एक तावील कितनी बुरी हो सकती है कि ला तश्तरु बि आयाति समनन कलीला, एक बंदा है जो कुरान पढ़ाने के पैसे लेता है, प्रोफेशनल्स भी तो होते हैं ना, दीनदारी दुकानदारी में भी कई दफ़ा बदली होती है। अब वो कहे जी कि आप ऐसा करें हमारे बच्चे को कुरान पढ़ाने क्या पैसे लेंगे, वो कहता है जी मैं इसके 100 पाउंड लूंगा, तो वो कहेगा नहीं 100 पाउंड तो बहुत ज़्यादा है, आप हफ्ते में एक दिन तो आ रहे हैं तो 100 पाउंड लेंगे, मुझे किसी ने बताया कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ बच्ची को लेके जाती हैं तो 25 पाउंड देती हैं, 4 दफ़ा महीने के 100 पाउंड देती हैं। अब वो आके कहे कि 100 पाउंड क्यों, वो कहे देखो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ना ला तश्तरु बि आयाति समनन कलीला, कि थोड़े पैसे ना लिया करो कुरान पढ़ाने के, ज़्यादा लिया करो। ये तावीलात होती हैं। मैं यहाँ हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं खुद भी सुनती हूँ ना पीछे कभी अपना के देखो पिछली दफ़ा क्या, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है कि मैं सिर्फ सोच को साथ लेके चल रही होती हूँ। अब इसमें आपको मैं 100 बातें और बता दूँ, लेकिन आप इसकी रूह को ना पाएं, ये कहाँ उतरी, कौन लोग था, तो इस आयतों का तो मकसद ही ख़त्म हो गया। और आप कई ऐसी भी जगह ऐसे इन आयतों को सुनेंगे जिसमें सिर्फ अपने हालात पे होती है, ये वहाँ जहाँ नाजिल हुई है वो नहीं होती। तो एक कोर्स में बैठ के पढ़ना, और अब मैंने इस पे दर्स भी दिए होंगे, जब मैं दर्स दूंगी मैं सिर्फ इसमें कोई एक टॉपिक लूंगी उस पे हाईलाइट करके पब्लिक को सुना दूंगी, कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप कुरान सीखने आए हैं मुझसे, कोई मजाक है? और अगर मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, मदीना के यहूद कौन थे, हिस्ट्री क्या थी, वो तो मैं आपको क्या दूंगी। याद रखिए कि उस्ताद का शक मशकूक कर देता है स्टूडेंट्स को। बाज़ लोगों को मैंने खुद देखा है, मैंने बहुत लोगों से फ़ायदा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, छोटों से भी सीखती हूँ बड़ों से भी सीखती हूँ, पूरी बात सुनाते हैं, ये कहते हैं फलां वो कहते हैं इत, अब एक आयत की 6-6 तफसीरें हैं। आप तफसीर इब्ने कसीर मेरे सामने खुली है लेकिन मैंने पढ़ी नहीं, मैं रखती हूँ इसको सामने लेके, मैं मुझे अरबी देखनी पड़े, लेकिन मेरी आदत है कि जिस पे कुछ नहीं, इस वक्त भी अगर आप मेरी स्क्रीन देखें तो इस पर सिर्फ अरबी खुला हुआ है, कुरान कुरान फ्लैश से खोलती हूँ, आप भी खोलना चाहें खोल लें। अब मैं इस वक्त क्या सोचती हूँ कि अगर सिर्फ इसकी तफसीरें लिखाने लगूँ तो एक एक लफ्ज़ के अंदर 20 क्यों बातें, ये भी कहते हैं एक इमाम कहते हैं ये कर लो वो कर लो, तो उन्होंने ये भी बता दिए कर ले, लोग बड़े खुश हैं जी इतना सुना रही है, दूसरे ने ये एंड पे स्टूडेंट से उनसे पूछा कि चाहिए अब हम क्या करें, कन्फ्यूज, तो कहती है अब मुझे तो नहीं पता, फिर जिसको जो समझ आता है कर लो। तो मैं उस क्लास में थी, ये बहुत पहले की बात है, तो मैंने सोचा कि 1.5 घंटे से इस क्लास में इस मौजू पे जो इतनी बातें चल रही हैं, ये गरीब लेके उठे क्या, शक लेके उठे हैं, फिर जिसका जो दिल आएगा वो उसको कर देगा। तो हमेशा याद रखिए पहले अपने अंदर यकीन लाइए जो बात कह रहे हैं, किसी से बात हो रही थी, यकीन करे तलाक का इशू था उनका कोई बेचारी का, अल्लाह ताला उनका मसला हल करे, तो किसी ने मेरा नाम दे दिया, मैंने कहा करा दें बात, मैंने बात की जो उनका इशू था, मैंने उनको बता दिया कि ठीक है तलाक हुई है लेकिन अभी गुंजाइश मौजूद है। कहती मैंने पहले भी ये बात सुनी है आपसे भी औरों से भी, जाकिर नायक से, वो सब यही कहते हैं, लेकिन मेरे मियाँ जो कह रहे हैं वो पूछ के आए हैं मौलवियों से, तो वो तो ये कहते हैं। मैंने कहा आप देखे वो जिनसे बात पूछने गए वो उनकी मर्जी है, मैं आपको जो ये मैं हैंकी पैंकी नहीं कर रही आपसे, मैं आपको शरह सदर के साथ कह रही हूँ, जो बात आपने मुझे सुनाई है मैंने अगली पिछली सारी सुनी उनकी थी, खुद तब सुनी वरना दूसरे से तो मैं सुनती भी नहीं ये बातें। तो मैंने कहा मेरे ख्याल में अभी आपके पास एक मौका मौजूद है, रजू कर सकते हैं आप लोग। अब आप सोचिए वो औरत कितनी दुखी, आवाज़ नहीं निकल रही, मियाँ खाने के टेबल पे बात होते होते बात भी किसी दूसरे की, और आपका मर्द आपको तलाक दे के चलो घर रात बाहर जाओ, आप क्या करेंगे? मैंने कहा आपका दिल मानता है इस्लाम इतना जालिम है, एक मुर्गी को ज़िबा करते हैं तो उसमें भी झटका दे के छोड़ दो फिर काटो, तो आप अभी मिसिज है और अभी आपको एक गैर औरत बना के कोई घर से निकाल दे या निकल जाए, इट डज इट मेक एनी सेंस? तो अब कुरान में लिखा हुआ है तो अब आप जिसकी सुनना चाहे सुन ले, मेरे पास हक यही है। यानी ये बात मैंने आपको इसलिए आज की है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस बात पे यकीन है वही बात आपसे करूंगी, कच्ची पक्की बातें नहीं कभी की कि भाई ये भी कर लो वो भी कर लो। हाँ तौफीक मांगेंगे कि अल्लाह तौफीक मानने की दे अमल की दे, अभी पूरा अमल नहीं है अभी सोच नहीं, लेकिन यहाँ से शक वाला जहन लेके आप कभी नहीं जाएंगे। तो ये सारे मसाइल थे उस दौर के यहूद के उलमा के, जिसकी बुनियाद पे वो अल्लाह के नबी के बारे में शोशे फैला रहे थे। अब होता क्या है, अगले शोशे पे चलते हैं, अभी देखते हैं। ये 3 चीज़ें तो हमने देख ली ना, कि वो आयतों के बदले में थोड़ी कीमत ले लेते थे, तलबीसे हक करते थे और तख्तुमुल हक करते थे। अल्लाह ताला उनके, अब यहाँ ये भी नोट कर लें, बात शुरू में मैं भूल गई हूँ कहनी, आगे भी बताऊँगी, लेकिन यहाँ यही लिख लें कि ये जितने रुकू चल रहे हैं ना, है तो यहूद का किस्सा, लेकिन यहूद के फिर 2 गिरोह हैं, एक उलमा यहूद और एक आम यहूद, जैसे उम्मी लोग होते हैं, फ़र्क बताऊंगी। ये जो रुकू है ना, ये यहूद के उलमा से खिताब है, ठीक है? आगे जहां हम आमतुन्नास की बात होगी वो भी बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला उलमा को अब तसल्ली दे रहा है कि जो कर रहे हो उसको छोड़ो, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو.